जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
Little boy, I miss you. With your sudden smile and your ignorance of pain, you walk through life and devoured it with nothing but misty goals to keep you company. You wandered through quiet woods with friends, and you were startled by a shuffling porcupine. Your heart beat mightily when you chased frogs. And caught one too big for a single hand. There was no time for meaning. A marshmallow gave it on a sharpened stick. A jackknife in your pocket gave you comfort when your friends were gone. A flower hidden in the woods behind an aging shriveled log. A dog who licked at your fingers and chewed at your jeans. A game of football that you didn't expect. A glass of cider. A cricket's cry. When did you lose your eyes and ears? When did taste buds cease to tremble? Whence this sullenness, this mounting fear, this quarrel with life? Demanding fear. This mounting fear is ledger's bonus. And it is the pain that forbids you to be a boy. Kavi kehta hai, little boy, I miss you. मेरे भीतर एक छोटा बच्चा था कभी, अब मैं उसको मिस करता हूँ, पता नहीं वो बच्चा कहाँ खो गया. एक बच्चा था, वो कहीं खो गया है, उसकी वो हंसी, वो खो गई है, उसकी वो मासूमियत कहीं खो गई है. जीवन में आगे बढ़ते 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 इतना बोझिल हो गया हूँ कि वो बचपन अब मुझे याद आता है. मुझे याद आता है जब मैं जंगलों में घूमता था अपने साथियों के साथ, और अचानक से चौंक उठता था जब वो पॉर्कुपाइन, पॉर्कुपाइन पता है ना, साही साही कांटे वाला, अचानक वो आ जाता था तो कैसे मैं चौंक जाता था. मेंढक के पीछे जब भागता था और किसी मेंढक को पकड़ता था, और वो मेंढक इतना बड़ा होता था कि हाथ में नहीं समाता था. ये सब मुझे याद आ रहा है. तब जीवन का ऐसा कोई अर्थ नहीं था, ये सब क्यों कर रहे हैं पता नहीं था, पर आनंद था. A marshmallow gave it on a sharpened stick. जब दोस्त छोड़ के जाते थे जंगल के बीच में, तो मेरे हाथ में जो छोटा सा चाकू था बस उसी का सहारा था. जैक नाइफ, पॉकेट नाइफ, वही सांत्वना देता था कि कुछ तो है. जंगल के पीछे जो सूखे खूंट थे, उसके पीछे जो छोटा सा एक फूल था, वो देखकर कैसा आश्चर्य होता था. उस कुत्ते को देखकर जो उंगलियों को चाटता था और जीन्स को चाटता था, वो फुटबॉल का खेल जो अचानक हम खेलते थे, और वो आम संतरे सेब का रस का ग्लास और झिंगूर की वो पुकार, वही जीवन था. पता नहीं कब ये आंखें और देखना बंद कर दिया. कवि कहता है, अब बड़ा हो गया हूँ, अब आंखें ये सब नहीं देखती है, न कान ये सुन पाते हैं. When did you lose your eyes and ears? When did taste buds cease to tremble? वो स्वाद कब कपना बंद कर दिया है. Whence this sullenness? ये भारीपन पता नहीं कहाँ से आ गया, ये भय कहाँ से आ गया पता नहीं, ये झगड़ा जीवन के साथ कहाँ से आ गया पता नहीं. वो कहाँ है मासूमियत, वो बचपन के दिन कहाँ खो गए पता नहीं. This mounting fear is ledger's bonus, and it is the pain that forbids you to be boy again. ये दर्द, ये भय, मैं वापस वह छोटा बचपन लाना चाहता हूँ, पर जीवन का ये भय, ये भारीपन मुझे वापस छोटा बच्चा बनने से रोकता है. Little boy, I miss thee with thy sudden smile. Whence this sullenness? ये दुख, ये दर्द, ये संताप, ये आक्रोश पता नहीं कहाँ से आ गया, कहाँ से जीवन को चालू किया था और जीवन कहाँ पहुँच गया. मैं उसी मासूमियत की ओर जाना चाहता था, चाहता हूँ. हम भी जब सब ज्ञान में आए थे तो कैसे मासूम थे, और कैसा नशा था, और कैसा उमंग उत्साह था, और पता नहीं इतना भारीपन कहाँ से आ गया. ज्ञान बढ़ता गया और भारीपन भी बढ़ता गया. ज्ञान अपने साथ पता नहीं क्या क्या ले आया. वो दिन कितने अच्छे थे, दैट इग्नोरेंस ऑफ पेन. तब पता नहीं था दर्द क्या है, तब खोज नहीं रहे थे जीवन का कोई अर्थ। कभी कहता है जंगलों में घूमता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी चीज चौंका देती थी, वो खरगोश, वो मेंढक, वो मार्शमेलो, वो पॉर्कुपाइन, साही, सब कुछ चौंका देता था। वो झिंगूर की आवाजें चौंका देती थी। और अब पता नहीं व्हेंस दिस सलननेस, ये सब कहां से आ गया। इसलिए मुरलियों में आता है, बचपन के दिन भुला ना देना, लौट चलो उन बचपन की यादों की तरफ, याद करेंगे तो एक सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करो और याद करो उस पल को जब हम ज्ञान में आए थे। वो दिन कैसे थे, वो सेवा केंद्र, वो सेंटर, वो बहने, वो प्यार, वो परिवार, अभी अभी किया हुआ कोर्स या प्रदर्शनी, वो गांव छोटा सा, भगवान को पाने की खुशी, वो नशा, छोटा सा सेंटर, गीता पाठशाला, कितने कम सामान थे वहां, चटाई केवल छोटी सी, वो भाग भाग कर हम सेवा में जाते थे, गाओ मुरली अमृत वेला सेवा। स्मृति, मुरली में अभी अभी क्या सुना, स्मृति। स्मृति और याद में क्या अंतर है? और याद, याद अर्थात रिमेम्बरेंस, याद था या फिर याददाश्त, अभी जो किया याद करने की कोशिश की। स्मृति अर्थात याद प्लस अनुभव। स्मृति में याद के साथ क्या जुड़ जाता है, अनुभव। इस सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि की शुरुआत सृजन से नहीं स्मृति से है। स्मृति ही सृजन है, स्मृति ही यज्ञ है, स्मृति ही युगांत है, स्मृति स्वरूप, स्मृति और स्वरूप, स्मृति के साथ अनुभव, और फिर तुरंत क्या बन जाता है उसका, स्वरूप, स्पिरिचुअल मेमोरी, स्पिरिचुअल पिलर्स। इस मुरली में पांच मुख्य बिंदु बाबा ने बताए, स्मृति के पांच आधार स्तंभ कौन से। मुरली कौन सी है, 18 जनवरी की है, 2 जनवरी का। मैं मेरा फिर से एक बार पढ़ना है तो स्मृति याद करना, बीच बीच में स्वयं को याद दिलाना, मैं कौन, मैं क्या, मैं किस लिए, मुझे क्या करना है। स्मृति ही बीज, स्मृति फाउंडेशन है। अगर स्मृति शक्तिशाली है तो सब शक्तिशाली, अगर स्मृति ही शक्तिशाली नहीं तो फिर कुछ भी शक्तिशाली नहीं। भट्टी का आज का 87th। कल हमने देखा रात को जल्दी सो जाना है, रात बीज है अमृत वेले का, सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मिल न देने से नुकसान। रात को सोने से पहले क्या क्या करना है ये आज हम देखेंगे। याद रखना, यदि किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकार स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो नहीं चला, चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गए। तो सोने से पहले क्या क्या करना है? सबसे पहले, अगर दिन में कोई लगाव उत्पन्न हुआ है तो उसको सोने से पहले ही समाप्त कर देना। किसी के प्रति विशेष लगाव, विशेष आसक्ति, विशेष याद, तो उसको विलीन कर देना है सोने से पहले। उस लगाव को वहीं अगर समाप्त नहीं कर तो वो लगाव स्वप्न में घुस जाएगा। तो सबसे पहला काम सोने से पहले लगाव समाप्त, स्वार्थ समाप्त, सौंप देना, दे देना, विकारों को भी दे देना, लगाव को भी दे देना, समर्पण। ये पहला कार्य है। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मल देकर खाली बुद्धि होके नींद की, तो बुद्धि को क्या करना है? खाली, एम्प्टी, बुद्धि को खाली कर दो। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और सो गए, यह है अलबेलापन। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया लेकिन यह अलबेलेपन की डैश है सजा। क्योंकि बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। तो क्या क्या करना है? बुद्धि को खाली, एक तो, दूसरा बुद्धि को क्लियर, हल्का, लाइट, एम्प्टी, क्लियर, और हवाले कर देना, सौंप देना। ऐसे नहीं थके हुए आए और बिस्तर पर गए और सो गए। चाहे विकर्म नहीं किया पर संकल्प भी नहीं किया लेकिन यह अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को क्या करो? खाली। दोनों ही, अच्छा भी और बुरा भी। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अगला सिद्धांत क्या है? बाप के साथ सोना। जब भी कोई मुरली पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही पॉइंट्स नोट करते जाना है। अभी तक क्या क्या पॉइंट आ गई? लगाव को अर्पण कर दो, दूसरा बुद्धि को खाली कर दो, तीसरा बुद्धि को हल्का कर दो, चौथा लाइट हल्का कर दो, खत्म कर दो, पोता मेल दो, बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सो। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते तो फरमान के बदले डैश मिलता है, अरमान। सुबह को उठकर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई, स्वप्न दोष, या फिर दुस्वप्न, नाइटमेयर्स, भयानक स्वप्न, या फिर व्यर्थ के स्वप्न, भयावह स्वप्न, डरावने स्वप्न, बहुत भयंकर स्वप्न आते हैं। योगी रात में स्वप्न नहीं देखता, दर्शन करता है। उसे स्वप्न नहीं होते, उसे क्या होते? दर्शन। जो जो हमने दिन भर किया वही स्वप्न में आता है, एक। जो जो दिन में दबाया वो स्वप्न में आता है, दो। ये दो मुख्य कारण है। जो जो दिन भर हुआ वही स्वप्न में दिखेगा, या जो जो दिन में दबाया वो दिखेगा। दिन में जिसने डराया वो रात में फिर उभर कर आए। इसलिए रात को सोने की विधि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा, आए थक गए थे और लेट गए, और कब नींद लगी पता ही नहीं चला। ये है अलबेलापन। चाहे किसी भी स्थान में हो, किसी भी परिस्थिति में हो और किसी भी समय में हो, ये क्रम होते रहना चाहिए। समर्पण करो, खाली करो, हल्का करो, पोता मेल दो, बाप के साथ सो जाओ। चाहे जमीन पे सो रहे, चाहे बिस्तर पे सो रहे, चाहे गाड़ी में सो रहे, चाहे एयरपोर्ट में सो रहे, चाहे बस में सो रहे, चाहे रेलवे स्टेशन में वेटिंग में है, कहीं पर भी हो, इसको अपना एक संस्कार बनाना है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, झूठ अंदर प्रवेश कर जाता है, वो भारीपन दूसरे दिन चलेगा, वो भारीपन दूसरे दिन सताएगा कहीं ना कहीं से आकर। तो क्या कहा, अकेले सोते हो तो भी स्वप्न आते, अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न नहीं आए, लेकिन फरमान को नहीं मरते। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन, तो अलबेला नहीं बनो। फिर क्या कहते हैं बाबा से, मेरी पवित्रता स्वप्न में खंडित हो गई, दिन में तो सब ठीक था। प्योर ड्रीम्स, ये बैरोमीटर है पवित्रता का, मापदंड है। जैसे आया वैसे यहां, वहां की बातें करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो डैश ही होते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग समाचार है, चटपटे, एकदम स्वादिष्ट, लज्जतदार जायका है जिसमें। वो समाचार सारे कैसे होते हैं, वेस्ट, एनर्जी को खींच लेने वाले, बहुत तेजी से विकर्म हो जाते हैं उससे, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति की उसमें ग्लानी करते, और ये वो व्यक्ति जिसकी हम ग्लानी कर रहे, निंदा करते, यदि वो योगी हुआ और यदि 1% भी वो राइट हुआ तो हमारे कितने पाप बन गए, इतने जन्मों, इतने समय की हमारी साधना तेजी से खत्म। जगदीश भाई जी ने जब शरीर छोड़ा था तब कुछ 10 प्रश्न थे। कौन से 10 प्रश्न थे, उसमें का हमें केवल एक प्रश्न याद है, वो दादियों ने पूछे थे और बाबा ने संदेश में उत्तर दिए थे। वो कहीं पब्लिश नहीं है, कहीं प्रिंट आउट नहीं है उसका, पर एक प्रश्न उसमें से ये था कि यज्ञ में ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना हलचल क्यों। तो उसमें बाबा ने एक उत्तर दिया था, उन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न, उत्तर बहुत सिंपल था कि सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, एक। दूसरा, जो लंबे समय से ज्ञान में है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, पर उसका पद बहुत छोटा है, तो अपने आप विकर्म में प्रवृत्त होगा, अपने आप ऐसे कर्म करेगा, ग्लानी के, विकार के, विकर्म के, निंदा के, कि अपने आप वो छोटे पद की तरफ उसे, क्योंकि ज्ञान का समय लंबा है 50 साल, पर पद बहुत छोटा है, तो अपने आप कर्म ही ऐसे होंगे जो वो छोटे पद की तरफ आकर्षित होते जाएगा, विकर्म होंगे बहुत तेज, बड़े बड़े विकर्म, महान विकर्म, उसका पद उसको खींच रहा है, ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जिसका पद बहुत छोटा बड़ा है पर समय उसके पास कम है, 5 साल से ज्ञान में है, तो वो उस कम समय में ऐसे ऐसे महान कार्य कर जाएगा, एक एक कर्म का बहुत ज्यादा पुण्य उसे प्राप्त होगा, क्योंकि उसका पद ऊंचा है। उन 10 प्रश्नों में से ये एक प्रश्न था और उसका ये उत्तर था, बाकी क्या थे वो हमें पता नहीं, पर वो जो पुराने लोग होंगे शायद उनके पास कहीं लिखे होंगे, क्योंकि प्रिंट कहीं पर भी नहीं है, पर ये एक तो है उसमें से। शायद जो पुराने होंगे या जिनके पास लिखत है उनके पास, या व्यक्त संदेश में से था, ये 10 संदेश आए थे शायद, उसमें से ये एक संदेश था और बहुत सूक्ष्म संदेश है ये कि स्थिर कैसे रहे ये सारी हलचल देखते हुए, क्योंकि ये सब हो रहा है। तो ये उसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये है, हिसाब किताब अपने आप वो खींचा जाएगा, क्योंकि पद छोटा है और समय ज्ञान का बड़ा है। तो ऐसे नहीं कि यहां वहां की बातें करते करते सो जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं, दिलचस्प समाचार कैसे होते हैं? व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और टाइम मिलता ही नहीं, जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये क्या है? अलबेलापन। रात मौन की वेला है, ना कि शब्दों की। रात में क्या हो जाना है? मौन, चुप। रात का मौन ही अमृत वेले की सीढ़ी है, द्वार है। अगर रात में भी बातें करते करते सोएंगे तो फिर कैसे होगा? अमृत वेले का बीज तो रात में ही बोया जाता है। तो क्या कहा बाबा ने? अगर बात करना है तो यह फरमान का उल्लंघन हो गया। अगर और टाइम नहीं है और जरूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे से बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ, सोते सोते नहीं सुनाओ। क्या करो? बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, पेट इतना दर्द हो रहा है कि अभी वो नींद ही नहीं आएगी, पेट में रह ही नहीं सकती, इतनी इंटरेस्टिंग बात पता चली है किसी के विषय में। समाचार ही इतना इंटरेस्टिंग है कि ये बहन पहले वहां थी अब वो वहां नहीं, यहाँ है। ये भाई पहले इस डिपार्टमेंट में था, अब उसको वहां से निकाल के इस डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। आज की ब्राह्मण संसार की आज की ताजा खबर, जब तक अखबारों में सुर्खियां नहीं बटोर लेते तब तक बेचैनी रहती है। तो बाबा ने क्या उसका इलाज बताया? अगर ऐसा ही है तो किसी को पकड़ो, उसको बाहर ले जाओ, कमरे के बाहर अपनी सारी भड़ास बाहर निकाल दो, उसको सुना दो पर 2 सेकंड में सुनाओ उसको। ये फरमान का उल्लंघन का, अगर और टाइम नहीं और जरूरी बात हो तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ, दो को ज्यादा से ज्यादा, सोते सोते नहीं। कई बच्चों को तो आदत है, बाप तो सभी को देखते हैं ना सोते कैसे है, नई बात। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी में से देखते हैं कि कौन कैसे रहे, बात कैसे रहे कर रहे, बाप दादा सब देखते हैं। बाप दादा का तो 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, हर एक सेकंड हर एक प्रवृत्ति वाला सबका चक्कर लगाते। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, अपने घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेले और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा, समझा? और बात करते करते कहीं तो 12:30 भी बजा देते। ये ब्राह्मणों का है, आते हमारे पास ओपड़ी में, कहते 12 तो बज ही जाते, सेवा इतनी ज्यादा है, कमरे में सेवा पूरी करके 11 बजे जाते, पहुंचते पहुंचते 11 बज ही जाते, सब कुछ सेवा इतनी है सेंटरों पर कि 11 बजते हैं सोते में, 11:30 बज जाते कई बार, मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में, क्योंकि जो अलबेला होकर सोया तो अमृत वेले भी तो अलबेला होगा। ऐसे नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं, बाप दादा देखता है, इसको याद रखना, बाप दादा देखता है। क्या पहन के सो रहे हो, क्या खा के सो रहे हो, किससे बात करके सो रहे हो, किसको क्या मैसेज करके सो रहे हो, किस स्मृति में सो रहे हो, किधर पैर करके सो रहे हो, और सोते कैसे हो, और उठते हो तो पैर किधर और सिर किधर, और उठते ही क्या करते हो, यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है और पूछेंगे तो कहेंगे नहीं मैं तो बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो, नींद करो टाइम पर, तो नींद भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हो ना तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गया। पर क्या था वो नींद। जैसे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसको उसी समय की हिसाब किताब चुकतु कर लेते हैं तो निश्चित रहते हैं, अगर अधूरा रहा हुआ तो न चाहते हुए भी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे ही आप भी रोज रात को जो कुछ किया वह बाप के सामने रख स्वयं को हल्का नहीं बनाते हो। अच्छा किया तो बाप स्वयं ही ऑटोमेटिकली 1,00,000 गुना जमा कर देगा, और व्यर्थ किया तो सुना कर अपना बोझ उतार देने से आगे के लिए व्यर्थ का खाता जमा होने से बाप बचा लेगा। विकर्म किया तो रहमदिल बाप सच्चाई और सफाई के आधार पर आधा दंड माफ कर देगा और आगे के लिए रास्ता क्लियर कर देगा। अगर कोई पाप हुआ है, अगर कोई विकर्म हुआ है दिन में, हमारी वजह से किसी को बहुत दुख हो गया है, भले हम चाहते नहीं थे पर हुआ है, क्या करें, या फिर उसने ले लिया, हम नहीं चाहते थे, जो भी कारण बना, क्या करना है, माफी मांग लो। तो बाबा ने क्या कहा, आधा दंड माफ कर देगा। होता है क्या माफ, कहा है, पर तो मानना पड़ेगा। तो आधा दंड माफ हो जाएगा। तो क्या क्या करना है अभी वापस समराइज करो रात को सोने से पहले। एक तो खाली, क्लियर, लाइट, सुना के हवाले कर दो, बाप के सामने रख दो, एक जगह कहाँ कहाँ, बाप के सामने रख दो, बाप के साथ सो जाओ। अगर बहुत ही हलचल हो रही है और इतनी चटपटी बात अपने पास है तो किसी को पकड़ो, 2 सेकंड जाओ सुना पर चटपटी बातें 2 सेकंड में पूरी थोड़ी ना होती है। कहने का मतलब है कि सुनाना ही नहीं है, कहने का मतलब है कि सुनना ही नहीं है, सब व्यर्थ है, सब तरफ, चारों तरफ झूठ और झूठ और झूठ और व्यर्थ और व्यर्थ और व्यर्थ। एक मार्केट में एक व्यक्ति खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि ये दवा मेरी ले लो, मेरी दवा ले लो। जो ये दवा को लेगा, रीजेन्युएशन इलिक्सर है ये कौन सा इलिक्सर है, रीजेन्युएशन। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मुझे देख लो, मेरी उम्र 300 वर्ष है, दिखता हूं क्या, पर है 300 वर्ष। दवा लेके कहता है ये दवा अगर तुम पी लोगे चिरायु हो जाएगी, और मुझे ही ले लो, मैं 300 वर्ष का हूं। एक भोला वाला किसान सुनते रहता है, वो उसके असिस्टेंट के पास जाता है, दवाई बेचने वाले के पास, और पूछता है क्या ये वास्तव में 300 वर्ष के है। वो कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो इनके साथ केवल 200 वर्ष से हूं। एक झूठ तो है ही, उसको सजाने वाला एक दूसरा, और वो भी गंभीरता पूर्वक कह रहा है मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो केवल 200 वर्ष से हूं। झूठ के साथ झूठ जुड़ रहा है, ये संसार भी झूठ का मेला है, व्यर्थ का मेला लगा हुआ है सब तरफ। तो बचाने के लिए विधि क्या है, रात को सौंप दो, पोता मेल दे दो, हवाले कर दो, खाली कर दो, क्लियर कर दो, बाबा के साथ सो जाओ, व्यर्थ की बातें करते करते नहीं सोना, और माफी मांग लो। क्या करो, अगर कोई पाप हुआ है तो क्या कर दो रात को, आई एम सॉरी, अच्छा बुरा दोनों दे दो, कुछ भी नहीं रखो, अच्छा किया तो वो भी तुम्हारा, बुरा हुआ तो वो भी तुम्हारा, दोनों ले लो, बस तुम मेरे साथ रहो। तो ये है आज का कार्य, आज के 2 कार्य, रात को सोते समय क्या कहना है, आई गिव एवरीथिंग बैक टू बाबा, मैं बाबा को सब कुछ लौटाता हूँ, जो कुछ मुझे सुबह मिला सब मैं तुझे लौटाता हूँ, पाप पुण्य, ना मैं पाप जानता हूँ ना पुण्य जानता हूँ, ना मेरे पास ज्ञान है ना मैं अज्ञान है, कुछ नहीं, सब कुछ सेरा तुझको अर्पण, सब कुछ मैं तुझको दे रहा हूँ, पाप पुण्य, दर्द सुख दुख, फायदा नुकसान, जो भी, सैंग सब कुछ मैं तुझको अर्पित करता हूँ, ये पहला कार्य है। दूसरा एक गोल्डन थ्रेड, अपना रेल और परमधाम से जोड़ता हुआ एक थ्रेड का चित्र बनाना है, और नीचे लिखेंगे कनेक्शन नेवर ब्रेक्स। ये जो हमारे याद की डोरी है, धागा है, ये कभी नहीं टूटता, हम उसके साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। तो आज हाँ अनब्रेकेबल है, तो हम दोनों, तो ये दो ही छोटे होमवर्क हैं आज की कविता और रोज की अव्यक्त मुरली इस तरह से रिवाइज करनी है जैसे ये रिवाइज की है। दिस इज द मेथड, ये परफेक्ट मेथड है रिवाइज करने की। ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं उसमें ABCD के आधार पर, और उसमें पूरी मुरली आ जानी चाहिए और इसमें जितना अलग अलग क्रिएटिविटी लाएंगे उतना अच्छा। जैसे देखो इधर अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग तरीके से लिखे गए, उसमें भी अंदर अंदर डायग्राम है। तो दिस इज अ फ्लैश कार्ड मेथड। नहीं नहीं सबको करना है।
ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है बकरी नंबर 3। 3 नंबर की बकरी, तो थोड़ा मिलाने के लिए मैंने बकरी नंबर 3 रखा है बीच में। अमृत बेले की शांति में जब मन जागा, तब रूह ने बाबा से प्रेम का संदेश मांगा। मधुर मुरली ने सुनाई एक बात, 3 बकरियों की थी गुड़ सौगात। लिखा था बकरियों में नंबर 1, 2 और 4, तीसरी कहाँ गई हुआ सबका विचार। मन के आंगन में उठा एक शोर, ढूंढने लगे सब बकरी की डोर। बाबा बोले, बच्चे ये बकरी की नहीं मैपन की बात है, मैपन ही वो बकरी है जो मन जो मैं करती वही उलझन का राज है। मैपन ही वो बकरी है जो मन में डेरा डाले, जिसे खोजते सब बाहर वो मन में ही बसेरा डाले। बकरी नंबर 3 थी बस एक मिसाल, व्यर्थ खोज में मत रखना ख्याल। मन के कोने में जो भ्रम है बसता, वही हमें माया से उलझाए रखता। ज्ञान गुण शक्ति मेरे उपहार, इन्हें सजाओ यही है सच्चा श्रृंगार। मन की गलियों से भ्रम मिटाओ, बाबा की याद में ज्योति जगाओ। बकरी नंबर 3 सिखाती यही बात, गुड़ों में रम जाओ यही है अमृत बेले की सौगात। तो थोड़ा इसी से संबंधित 2 पंक्ति एक्स्ट्रा लिखी है बकरी नंबर 3 से रिलेटेड, आदरणीय सचिन भाई जी को समर्पित है। 3 नंबर की बकरी नहीं, वो बकरी जब इधर अमृत बेले भट्टी में आई तो उसका क्या परिणाम हुआ वो लिखा है। 3 नंबर की बकरी सचिन भाई जी की भट्टी में जब बैठा थोड़ी देर, बकरी नंबर 3 भी बन गया ज्ञान का शेर। अमृत बेला की भट्टी में भाई जी जब ज्ञान बरसाए, तब बकरी नंबर 3 भी ध्यान में समा जाए। ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। थामले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरे, थामले तप की मशाले। पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर। सपनों का आवेश पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल उठ चल कर तम का। तोड़ दे नींद की संज। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, न रुक